بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا رسول الله محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، کتاب الاشربہ یہ مشروبات کی کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کتاب العقیمہ کا ذکر فرمایا ہوں، کتاب الازاہی، کتاب العقیقہ، کتاب الاضحیہ، یہ ابواب اور یہ مسائل اس سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں. یہاں سے اشربہ کو بیان فرما رہے ہیں. اشربہ شراب کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں مشروب کے، یعنی جو ڈرنکس ہوتے ہیں ان کے لیے اشربہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حلال اور حرام دونوں قسم کی شرابوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. جو مشروب حلال ہیں وہ بھی، اور جو مشروب حرام ہیں ان سے متعلق جو روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے مطابق وہ یہاں ذکر کی جا رہی ہیں. اس میں سب سے پہلے انہوں نے آیت مبارکہ کا ذکر فرمایا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت بھی ہے کہ جو باب قائم کرتے ہیں یا جو عنوان قائم کرتے ہیں تو قرآن پاک سے جہاں تک ہو سکے اس کو جو ہے اس بطور دلیل کی کوئی آیت وغیرہ اس پر پیش کرتے ہیں. تو یہاں پر جو آیت ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والاجرام یجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ بے شک شراب اور جوا اور بت اور تیر یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں، گندی چیزیں ہیں، تم ان سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو حرام ہے ہمارے لیے. ایک تو شراب ہے، اور ایک جوا ہے، اور ایک بت ہے، اور ایک تیر فال نکالنا ہے. یہ چار کام زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل منشا ہے وہ شراب کو بیان کرنا ہے، تو یہ حرام ہے. اور قرآن پاک میں چار موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا شراب کا، سورہ بقرہ کے اندر بھی اور دوسری صورتوں کے اندر، اور پھر اس کی وجہ بھی ذکر فرمائی آگے. یہاں تو اتنی ہی آیت ہے، پھر تیبو لعلکم تفلحون، لیکن آگے قرآن پاک میں فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. کی وجہ کیا ہے اس کو تفصیل قرآن پاک میں ذکر کیا گیا. شراب ہوتی کیا ہے، شراب کو شراب کیوں کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس سے منع کیوں کیا گیا ہے، اس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. خمروں کے اصل میں معنی آتے ہیں چھپا دینے کی. تو عام طور پر جو شراب کو خمر کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ عقل کو چھپا دیتی ہے انسان. جو آدمی شراب پیتا ہے تو عقل اس کی چھپ جاتی ہے پھر، اور اس کے بعد بے عقلی کے کام آدمی کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ جو خود انسان کی آخرت کے لیے بھی اور انسان کی دنیا کے لیے بھی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہوتی ہیں. علماء نے اس عنوان پر بہت ساری اور بہت تفصیلی کتابیں لکھی ہیں، اور حدیثوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بہت سی اتنی مذمت اس کی جو بیان کی گئی ہے وہ کسی اور چیز کی اتنی مذمت نہیں بیان فرمائی قرآن و حدیث میں. اسی وجہ سے شراب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں پر لعنت فرمائی ہے. کسی اور کام کے بارے میں 10 چیزوں پر لعنت نہیں کی گئی ہے. کسی اور برائی کرنے پر 10 چیزوں پر لعنت نہیں کی گئی ہے. شراب ہے جس کے بارے میں لعنت کی گئی ہے، اور ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی کہ جو بنانے والا ہے شراب اس پر بھی لعنت ہے، جو پینے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو پلانے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو شراب منتقل کرنے والا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے بعض کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا، یہ لانے لے کے جانے والے پر بھی शराब जो बना रहा है उस पर भी लानत है, लानत ही लानत। 10 चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई है, किसी और चीज़ के बारे में आपने इतनी मजम्मत नहीं बयान फरमाई, इतनी वाई नहीं बयान फरमाई है। ही उम्मुल खबाइस, इसी वजह से हदीस में इसको उम्मुल खबाइस और उम्मुल फवाहिश कहा गया है। बेहयाई के कामों की जड़ है, मुनकरात की ये जड़ है, और आज उम्मत में उतनी ही ज़्यादा ये आम हो गई है और इतनी ज़्यादा आम की जा रही है। अब तो हलाल नाम से जो है हलाल शरामे भी आने लगी है। और ये भी पेशन गोई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि क़ुरबे क़ियामत शराब को हलाल जो है ना कहकर पिया जाएगा। और मार्केट में बहुत सारी ऐसी शराबें भी मिलती हैं कि जो हलाल लेबल इसके ऊपर लगा हुआ है और हलाल की कोशिशें की जा रही हैं और पिया भी जा रहा है, पिलाया भी जा रहा है। यहाँ इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले शराब का जिक्र फरमाया और फिर उसके बाद जुए का जिक्र फरमाया। और सहाबा इकराम को भी शराब की बहुत ज़्यादा आदत थी, इतने ज़्यादा वो शराब के आदी थे कि बयान नहीं किया जा सकता। 2-4 घंटे शराब पिए बगैर नहीं रह सकते थे, उनकी आदत इतनी बनी हुई थी सहाबा इकराम की, इतना ज़्यादा आदी थे। लेकिन जब कुरान का हुक्म आ गया, हदीस का हुक्म आ गया, तो उनकी जो मिसाल मिलती है उस हुक्म पर अमल पैरा होने की, वो कि आज दुनिया जो है या कोई तारीख उस जैसी मिसाल पेश नहीं कर सकती। अल्लाह और फिर ये जो हुक्म नाजिल हुआ है इस आयत में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बचने का हुक्म दिया, लेकिन सबसे पहले जब शराब का हुक्म हुआ था तो वहाँ बचने का हुक्म नहीं दिया गया। तदरीजन शराब के अहकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आहिस्ता आहिस्ता शराब के अहकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। सबसे पहले यह फरमाया कि वइस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। हमारी रिवायत में यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और तमन्ना जाहिर की कि शराब के बारे में कोई वाज़ेह हुक्म नाजिल हो जाए तो अच्छा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि वयसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। ऐ नबी, लोग आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, आप उनसे कह दीजिए और उनको बता दीजिए कि इसमें इस्मुन कबीरुन बहुत बड़ा गुनाह है और मनाफिउ लिन्नास लेकिन लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ें भी हैं। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मना तो नहीं फरमाया, ये बताया कि भाई इसमें फ़ायदा भी है नुकसान भी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ममानात नहीं थी तो लोगों ने, कुछ लोगों ने उसके गुनाह को देखकर, उसकी कबाहत को देखकर, उसकी बुराई को देखकर छोड़ दिया, कुछ सहाबा ने, लेकिन बाद दूसरे पी रहे थे, उनके भी ममानात नाजिल नहीं हुई थी, तो सिलसिला चल रहा था, पुराने आदि भी थे उसके। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद हजरत उमर ने फिर दोबारा दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी इस बारे में कोई वाज़ह हुक्म नाजिल हो जाता तो बहुत अच्छा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा हुक्म नाजिल फरमाया और उससे पहले एक वाकया भी पेश आया कि चूँकि ममानात नहीं हुई थी तो इसलिए बाज़ लोग शराब, बाज़ सहाबा शराब पी रहे थे और शराब पीने की हालत में नमाज भी उन लोगों ने पढ़ा दी तो नमाज में सारी गलतियाँ हो गई। जैसे हुलिया या उसूल काफिर में पढ़ी एक सहाबी ने, तो ला आबुद माद आबुदून के बजाय ला आबुद, यानी उसकी जो अरबी उन लोगों ने पढ़ी, मतलब उसका ये निकला कि तुम लोग इसकी इबादत करते हैं, मैं भी उसकी इबादत करता हूँ, शराब के नशे में पढ़ा दी आयत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कुरान पाक की आयत नाजिल फरमा दी कि ला तक़रबु सलाह वान तुम सुकारा, कि जब तुम नशे में हो तो उस वक्त जो है नमाज के करीब भी मत जाओ। लेकिन इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने शराब का हुक्म जो है सराहतन मना नहीं फरमाया, सराह ने ये नहीं कह दिया कि शराब से बच जाओ, शराब से रुक जाओ, बल्कि ये फरमाया कि नमाज की हालत में करीब मत जाओ। तो एक गुंजाइश इससे निकल रही थी, तो इस बुनियाद पर वह सहाबा फिर भी पीने लगे, भी सिलसिला जारी था। तो फिर तीसरे नंबर पर फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आकर आज करने लगे कि अल्लाह के नबी, अगर कोई सरी हुक्म इस बारे में और नाजिल हो जाता तो बहुत अच्छा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके बाद यह आयत नाजिल फरमाई, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون। ये जो शराब है, ये जो चुबा है और ये जो बुध है और ये जो इस्तेमाल बिलअज़लाम है, पीरों के जरिए जो तुम लोग पाल निकाला करते हो या फिर चुबा खेला करते हो, तो ये जो है शैतानी कामों में से इससे बचा करो। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तदरीजन शराब के अहकाम को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल फरमाया। यहाँ सवाल ये होता है कि अल्लाह चाहते तो बराह रास्त ही हुक्म दे देते, कभी शराब नहीं पीना है हराम है, लेकिन यह हुक्म आहिस्ता आहिस्ता क्यों हुआ? उलेमा ने उसकी वजह यही लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जज्बात का लिहाज रखा है अहकाम को नाजिल करने में। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जज्बात का और इंसानी जो है ना आदतों का लिहाज करके अहकाम को नाजिल फरमाया। बराह रास्त अगर ये हुक्म दिया जाता तो अमल पैरा होना बड़ा मुश्किल होता। तो पहले लपाक ने जहन साजी फरमाई, इंसानी जज्बे की आदत है बनी हुई, उसका छोड़ना मुश्किल है फौरन ही। और फिर सेहत के अतबार से भी ये चीज़ मुजिर होती है कि भाई कोई आदमी किसी चीज़ का आदि हो जाए और उसको आज तक आदमी हो कल अगर फ़ौरन छोड़ने के लिए कह दिया जाए तो बड़ा मसला होता है। आदमियों की सिगरेट की आदत होती है, इतनी ज़्यादा आदत होती है, इतनी ज़्यादा बयान नहीं की जा सकती। हमारे एक साथी यहाँ पर एक मरतबा अपने किसी रिश्तेदार का वाकया जिक्र कर रहे थे कि भाई इतनी ज़्यादा सिगरेट की आदत थी कि उनका ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई। तो ऑपरेशन थिएटर में उनको ले जाया गया तो उस वक्त उनको जो इंजेक्शन दिया जा रहा था बेहोश करने के लिए, बेहोश ही नहीं हो रहे। एक मरतबा दिया गया, दो मरतबा दिया गया, तीन मरतबा दिया गया, तो बेहोश नहीं हो रहे। डॉक्टर परेशान है, तो आखिर में उनको ये सोची कि भाई ये बंदा जिस चीज़ का आदी है थोड़ा सा उसको उसका चखा दिया जाए। एक सिगरेट की डब्बी लाई, सिगरेट पिलाई, जैसे ही उन्होंने एक टच लिया फौरन बेहोश। छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है आदमी के लिए जो चीज़ें आदी होती हैं, इतना ये चीज़ें रस जाती हैं, बन जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर भी इन्हीं इंसानी जज्बात और इंसानी आदतों का लिहाज करते हुए हुक्म ये नाजिल फरमाया कि भाई पहले ये बयान फरमाया कि भाई इसमें गुनाह है, मनफात भी है और गुनाह भी है। तो सहाबे इकराम को समझ में आ गया कि भाई ये गुनाह है, और उनकी ये भी समझ में आने लगा कि भाई गुनाह है तो इसका मतलब ये हुआ कि हुक्म अब आगे जो है कुछ ना कुछ आने वाला है इस बारे में। फिर उसके बाद हुक्म दिया गया कि ठीक है ये बुरी चीज़ है ना, तो नमाज की हालत में मत, ठीक है दीगर हालतों में तुम्हारे लिए गुंजाइश है, लेकिन जब नमाज पढ़ना हो तो उस वक्त मत पीना, हुक्म आ गया। फिर उसके बाद थोड़ी सी और जहन साजी हो गई, कुछ लोगों ने और छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब देखा कि भाई थोड़ी जहन साजी हो गई है, लोग राजी हो गए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया कि भाई अब मुकम्मल बचो इससे। चुनांचे जिस वक्त ये हुक्म नाजिल हुआ था, अजीब व गरीब सहाबा इकराम की यानी उनकी जो तारीख है, उनकी जो सीरत है, वो पढ़ने की है। इतने आदी थे, बल्कि बाद सहाबा इकराम तो उस मौके पर अपनी पूरी ज़िंदगी की जो पूंजी थी, जो सरमाया था, पूरा का पूरा लेकर शराब खरीदने के लिए चले गए मुल्क साहब। और जब पूरी पूंजी से शराब लेकर आए तो हुक्म उनको मालूम यह हो गया कि भाई शराब की हुरमत नाजिल हुई है। तो पूरा का पूरा सामान, अपना पूरा का पूरा माल, जो कुछ उन्होंने ख़रीदा था, वो सब एक पहाड़ पर डाल दिए और आगे अल्लाह के नबी की खिदमत में, और कहने लगे कि यार रसूलुल्लाह मेरी हालत ये है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि भाई अब तो हुक्म हुरमत का आ गया है, अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गए सारे के सारे जो उनके घड़े थे शराब के पूरे फोड़ दिए, पूरी ज़िंदगी का सरमाया उन्होंने बहा दिया अपने आप में। इतना आसानी के साथ अमल पैरा होना कोई मुश्किल है, कोई आसान बात नहीं है। सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त शराब का हुक्म नाजिल हुआ तो हमको जो मस्जिद यानी जो मदीने की जो गलियाँ थी, तो वो ऐसा मालूम हो रहा था कि भाई वो यानी दरिया बह रहा हो पानी का, नदी बह रही है पानी की, इस तरह शराब बह रही थी। सबके पास महफूज शराबें थी, सबके साथ सबने बहा दी थी उस मौके पर। और कई दिनों तक जब भी बारिश होती थी तो शराब की बदबू उठ कर आती थी, इतनी शराब बहा दी गई थी मदीने मुनव्वरा में सिर्फ एक हुक्म की बुनियाद पर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बरकत है, आपकी सोहबत की बरकत है कि ये जहन उनका बन गया था। जैसे ही अहकाम हुक्म नाजिल हो जाता था तो फौरन उस पर अमल पैरा हो जाते थे। रुके का हुक्म नाजिल हुआ उस वक्त भी कैफियत यही थी। रिवायतों में है कि एक सहाबिया को मालूम हुआ रास्ते में जा रही थी कि रुके का हुक्म नाजिल हुआ, दीवार की तरफ रुख करके वो ठहर गई, पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, और कहने लगी कि जब तक मेरे घर से कोई आकर जो है मुझे चादर न दे दे और मैं अपने चेहरे को न छुपा लूँ, उस वक्त तक मैं घर नहीं जाऊँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी यही था कि पहले जहन साजी फरमाया करते थे, क्योंकि जहन जब जो है ना उसका कबूल कर लेगा तो फिर उसके बाद आदमी के लिए बुराई को छोड़ना भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ये उसलूब यानी अख्तियार फरमाया है। तो ये पहले जहन साजी होनी चाहिए, उसके बाद अमल पैरा होना चाहिए। इसमें फ़ायदा क्या है और इसमें नुकसान क्या है? कुरान पाक में तो फरमाया गया कि कुल फीहि मा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए नुकसान भी है, लोगों के लिए फ़ायदा भी है। तो फ़ायदे की चीज़ क्या है? तो उलमा ने लिखा है कि फ़ायदे की चीज़ है कि कुछ फ़वाद इसके अंदर है ज़रूर। जैसे आदमी शराब पी लेता है तो उसकी वक्ती तौर पर उसका असर होता है, वो ये होता है कि भाई दौरा उसका दौरान खुद तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से नशात आ जाता है तबीयत में। जब नशात आ गया तो उसी को आदमी सब कुछ समझने लगे, यानी जब आप एक हाथ में पी आदमी जब बहुत ज़्यादा पी लेगा तो जाहिर सी बात है कि सो जाएगा वो, लेकिन जब एक हाल में पीता है आदमी तो हाल में पीने की सूरत में एक नशात आदमी के अंदर होता है तबीयत में, बस वही उसके लिए सब कुछ होता है कि भाई, और ये समझ रहा होता है कि भाई ये चीज़ क्या है, यानी मेरे लिए कुवत बख्श हो गई, इसकी वजह से जो है ना जिसम में एक ताकत आ गई, जिसम में एक नशात आ गया, जुस्ती आ गई। लेकिन ये तो वक्ती फ़ायदा है, मुसलसल पीने की वजह से उसके जो नुकसान होते हैं फिर वो डॉक्टरों से आप लोग पूछे तो बताएंगे फिर आप क्या क्या उससे नुकसान होते हैं। वक्ती के तौर पर आदमी को थोड़ा सा रंग उसका खिला हुआ मालूम होगा शराब पीने से, थोड़ा सा रंग खुल जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन चंद साल पिए उसके बाद पता चलेगा कि भाई जो रंग खुला हुआ था उसके बाद चंद दिनों के बाद जो गुंजा जाएगा आदमी पता चलेगा। इसी वजह से डॉक्टरों की तहकीक ये है कि भाई आदमी जब शराब का आदी होता है तो 60 साल का आदमी 40 साल का मेन 60 साल 40 साल में आदमी 60 साल के बराबर हो जाता है। इंसान का ज़ाहरी हुलिया भी बताने लगता है और इंसान का अंदरून भी इतना कमज़ोर हो जाता है कि भाई 60 साल के आदमी का जो अंदरून यानी अंदरूनी निज़ाम कमज़ोर होता है, 40 साल की उम्र में आदमी की हालत हो जाती है शराब मुस्तकिल पीने की वजह से। बड़ी बुराइयां हैं, मेरा भी आदमी का खराब हो जाता है उसकी वजह से, बल्कि ये भी है कि इंसान की अकल भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती है शराब की वजह से। बास सूरतों में तो हार्ट अटैक यानी दौरान खून इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि भाई हार्ट अटैक के अंदेशे होते हैं, बाद-बाद आदमी जुनून की हालत में पहुंच जाता है। फिर इसके अलावा इतनी खराबियां हैं इसकी, इतनी खराबियां हैं इसकी, इनकी बयान नहीं की जा सकती। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि इन्नमा युरीदु शैतान व युकिया बैनकुम अल अदावतु वल बगदा फिल खमरि वल मैसिर, के आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं शराब पीने की वजह से, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और आपस में दुश्मनियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि आदमी जब पी लेगा होश ही में नहीं होगा तो क्या करेगा पता नहीं है। अब जो आदमी होश में है और दोनों की आपस में मुलाकात हो गई तो उसके बाद आप देखेंगे ये दोनों खाली नहीं रहेंगे, फिर गाली गलौज होता है आपस में, मारपीट भी हो जाती है, बदतमीजी भी हो जाती है, बेहूदगी भी हो जाती है, ये सब कुछ हो जाता है। अब उसके बाद जिससे हुआ है उससे दुश्मनी पैदा हो गई। और शैतान ये इन्नमा युरीदु शैतान, और शैतान ये चाहता है कि इसके जरिए आपस में अदावत दुश्मनी पैदा हो, तो मुसलमानों में इख्तलाफ और इंतशार इससे होता है फिर, और आपसी जो ताल्लुकात हैं इसकी वजह से खराब होते हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और सबब जिक्र फरमाया कि वयसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि वअन सलाह, ये ऐसी चीज़ है कि अल्लाह के जिक्र से भी रोकती है और नमाज से भी रोकने वाली चीज़ है। नशे की हालत में तो क्या पता चलेगा उसको, रात रात थोड़ा यानी 12-12 घंटे 14-14 घंटे नशे के आदि हैं लोग, जब तक पिए नहीं तब तक सोते नहीं। लेवर जो तबका है ना आमतौर पर वो पीने का आदि होता है, खासतौर पर हमारे यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा रिवाज पकड़ रही है, नशे के आदि होते जा रहे हैं, नौजवान नशे के आदि हो रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों से नशा करते हैं कि हैरत करेंगे आप। छोटे छोटे बच्चे हैं 12-12 साल के, 14-14 साल के नशा कर रहे हैं, कोई पेट्रोल से नशा कर रहा है, कोई किसी और चीज़ से नशा कर रहा है, पेट्रोल से भी नशा करते हुए हमने देखा है, यानी बैठ कर बच्चे सूंघते हैं और उससे नशा कर रहे हो। थोड़ी देर आप सूंघेंगे तो फिर पता चलेगा कि कितनी क्या होती है, आदमी को नशा करने लगता है। फिर उसके बाद उम्र ये है, और बास तो मैंने खुद हमने देखा है कि 6-6 साल के 5-5 साल के बच्चों को बाप जो है ना शराब पिला रहा है, बाप शराब पिला रहा है बच्चे को। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ मंजर आपको बयान कर रहा हूँ। हमारे घर के पास इस तरह की सूरत हाल होती थी, लड़ाइयाँ रेगुलर चलती थी उसकी, वो भी वाकयात हैं, रोजाना रोजाना की बुनियाद पर लड़ाई हो रही है। तो कुरान पाक का ये जो हुक्म है बिल्कुल यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात इरशाद फरमाई वो सादिक आती है। अदावत और दुश्मनियाँ इसकी वजह से पैदा होती है, फिर बेहयाई इसकी वजह से अलग पैदा होती है शराब पीने की वजह से। अब तो शराब में अजीब और गरीब किस्म की निकल गई है, शराबों की कई सारी शराबों की अकसाम है, बल्कि शराबों के बर्तन भी अलग अलग हैं। एक मरतबा एक मजमून में पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि तकरीबन 21 किस्म के गिलासेस हैं, 21 किस्म के गिलासेस हैं जो अलग अलग शराबों के लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये शराब के लिए ये गिलास, ये शराब के लिए ये गिलास, ये शराब के लिए ये गिलास, और शराबें भी मखसूस होती हैं कि भाई ये इस वक्त पीने की, ये उस वक्त पीने की, ये जो है ना इस मौके पर, ये इस मौके पर, इतनी अकसाम आ गई। अब तो हलाल शराब भी आ गई है पी रहे हैं। रसूलुल्लाह वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़ियामत ऐसा होगा कि शराब आम हो जाएगी और लोग उसको हलाल का नाम देकर पीने लगेंगे। ये इसकी मजम्मतें हैं जो कुरान जो उलमा ने बयान फरमाई हैं कि बे इंतहा इसकी खराबियाँ हैं, जिस्मानी एतबार से भी मुजिर है, रूहानी एतबार से भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुजिर है। और नौजवानों का जो तबका है, नौजवान तबका आहिस्ता आहिस्ता इसका आदि होता जा रहा है, आहिस्ता 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 लेबर तबका इसका बहुत ज़्यादा मुतासर। एक मरतबा एक लेबर जो है ना काम करते हुए कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि कोई मुसलमान जो लेबरी का काम कर रहा हो, हमाली का काम कर रहा हो, मजदूर का काम कर रहा हो, वो जो है ना शराब में पिए। काम करने के बाद उनको तो आराम चाहिए, राहत चाहिए, वे पी लेते हैं, उसके बाद बेहतरीन नींद सो गए, लेकिन उसमें उनको राहत और सुकून महसूस होता है। तो राहत सो जाने का नाम नहीं है, जिनका जो सुकून होता है वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب। ऐ लोगों, अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान कल्बी जो है ना वो नसीब होता है, इत्मीनान आदमी को तब नसीब होगा। ये खामोशी छाई हुई है, आदमी को पता नहीं चल रहा है, तो वो सुकून नहीं है, वो राहत नहीं है। मौलाना साहब रहमत बरकातहुम के फर्जंद अभी आए थे, मौलाना यूसुफ साहब ने एक बात कही थी कि भाई एक सुकून होता है और एक आदमी को जो है एक सन्नाटा होता है और एक सुकून होता है। सन्नाटे और सुकून में बहुत बड़ा फर्क है। कब्रस्तान में आप जाएं, सन्नाटा तो होगा, सुकून नहीं मिलेगा आपको, दिल जो है ना आपका धक 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 कर रहा होगा। जब आप जाएं रात में खासतौर पर कब्रस्तान में चले जाएं, पता चलेगा फिर उसके बाद आपको ऐसी कैफियत आदमी की होती है। सन्नाटा है तो ऐसा सन्नाटा है कि ऐसा सन्नाटा कहीं नहीं मिलेगा आपको। इंसान को अपने जिस्म में दौड़ते हुए खून की आवाज़ भी सुनाई देगी, हरकत करते हुए दिल की आवाज़ भी सुनाई देगी। जब आदमी इंतहाई खामोशी में तन्हाई में होता है तो उसको उस वक्त पता चलता है। तो सन्नाटा बिल्कुल अलग चीज़ होता है। आदमी बगैर यानी ऐसी हालत में चला जाए, ऐसी जगह चला जाए कि जहाँ कोई आवाज़ नहीं, या ऐसी कैफियत में चला जाए कि जहाँ पर जो है ना इंसान को ना कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, ना उसका जिस्म काम कर रहा है, ना उसकी अकल काम कर रही है, تو یہ ایک قسم کا سناٹا ہے، یہ راحت نہیں ہوتی ہے. راحت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہ رکھی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل جو ہے نا جو مطمئن ہوں گے، دلوں کو جو راحت ملے گی وہ اللہ کے ذکر میں ہے. دنیا اور دنیا کی چیزوں میں کوئی راحت نہیں ہے. تو فرمایا کہ انما الخمر، ایک تو شراب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطانی کاموں میں سے، اس سے بچو. دوسرا جوا ہے، یہ بھی جو ہے شیطانی کاموں میں سے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور جوئے کی حقیقت کیا ہے؟ جوئے کی حقیقت یہی ہے کہ اس میں انسان کا مال خطرے پر معلق ہوتا ہے، کہ بھائی یعنی ایسی جگہ پیسے آدمی لگا دے کہ اس کا نفع آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی بالکل جو ہے نا اس کے اندر آدمی کا نفع ہاتھ میں نہ آئے. جو لاٹری ہوتی ہے ہماری، ایسی بہت ساری قسمیں ہیں جو آج کے زمانے میں علماء منع فرماتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنے پیسے لگاتا ہے اس کا بدل طے نہیں ہوتا، وہ چیز ملے گی نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے کہ مل جائے ہو سکتا ہے کہ نہیں. لاٹری میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیسے دے کر کوئی لاٹری خریدتا ہے، اس کے بعد وہ چیز اس کے ہاتھ میں آئے گی نہیں آئے گی نہیں معلوم. یہ بھی حرام قرار دیا گیا. کیوں؟ اس کی بھی بنیاد وہی ہے. اس یعنی جو شراب کے مفاسد ہیں وہ جوئے کے بھی مفاسد ہیں، ملتے جلتے آپس میں، اس سے بھی آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اس میں بھی جو ہے نا انسان کے شراب میں بھی مال و دولت حد سے زیادہ تباہ ہوتی ہے، اور جوئے میں بھی انسان کا مال اور انسان کی دولت حد سے زیادہ تباہ ہوتی ہے. بلکہ ایک ڈاکٹر کا ایک اقتباس تھا، وہ یہ تھا کہ اگر یعنی دنیا کے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو آدھے ہاسپٹل اور آدھے جیل خانے بند ہو جائیں گے. خود بخود اتنی زیادہ بیماریاں اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں، اتنا زیادہ خرابی اس امت کے اندر آتی ہے. اور جوئے کی حالت بھی یہی ہے، اتنا مال و دولت یعنی طبی اعتبار سے بھی انسان کے لیے، ظاہری اعتبار سے بھی انسان کے لیے چیزیں اتنی نقصان دہ ہیں کہ انسان کے مال و دولت کو بھی تباہ کرتی ہیں، انسان کی دنیا کو بھی تباہ کرتی ہیں، انسان کی آخرت کو بھی تباہ کرنے والی چیزیں ہیں. اور پھر جوئے کے اندر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی آدمی تھوڑا اپنا سب کچھ ہار جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے جوئے جو کھیلنے والے ہیں ان کے پاس بھی یہ حال ہوتی ہے، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. عادت ایسی پڑ جاتی ہے جس کا ایسا لگ جاتا ہے کہ بھائی جیسے شراب کی لت ہوتی ہے ایسی جوئے کی بھی لت ہوتی ہے. جیسے شراب میں آدمی مست ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، شکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، جوئے کے آدمی بھی ہوش میں رہتے ہوئے یہی حالت میں ہوتے ہیں. جیتنے کی ہارا ہے تو جیتنے کی فکر لگی ہوئی ہے، جیتا ہے تو اور جیتنے کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے آدمی. اور جو جیت رہا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی تکلیف میں اس کو راحت مل رہی ہوتی ہے. اسلام میں تو ہمدردی کا حکم دیا گیا، یعنی وہ تو تکلیف میں ہے، وہ غم میں ہے، اور ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ میں جیت رہا ہوں. جمعے کو جو حرام قرار دیا گیا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سامنے والا تکلیف میں ہے، وہ غم میں ہے، اس کا سب کچھ جڑ گیا. بلکہ صورتحال زمانے جاہلیت میں جو ہوا کرتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ مال و دولت نہیں بلکہ اپنی بیوی بچوں کے اوپر بھی جوا کھیلا کرتے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ جس کا مال و دولت وہ بھی چلا گیا، بیوی بچے بھی اگر ہار گئے جوئے کے اندر، تو انسان کی بے غیرتی کے یعنی کیا تکلیف اس کے اوپر گزرتی ہوگی. پھر مال و دولت بھی چلا گیا، بیوی بھی چلے گئی، بچے بھی چلے گئے، جوئے میں ہار جایا کرتے تھے. اب اس کا غم اس کی تک اور یہ خوش ہے ادھر. تو دوسرے کی تکلیف میں جو جوا جیتنے والا ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے، دوسرے کے غم میں جوا جیتنے والا جو ہے نا اپنے آپ کو فتح پانے والا سمجھتا ہے. اس لیے شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا کہ یہ نہیں، یہ تو مخلوق کے ساتھ بے رحمی ہے. یہ مخلوق کے ساتھ جو ہے نا یعنی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اس میں کہ بھائی جو جیتنے والا ہوتا ہے تو وہ تو دوسرے کے اوپر ظالم ہو جاتا ہے. ہمدرد اسلام میں ہمدردی کا تصور ہے، اشار کا تصور ہے، دوسرے کے ساتھ تعاون کا تصور ہے. مسلمان کا بھائی جو ہے نا وہ اسلام میں قرار دیا گیا. اور صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو جیت رہا ہے. اب جتنے اب اس جوئے کے نام پر بہت ساری ایسی بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جو یعنی جن کو حرام قرار دیا جاتا ہے، لوگوں میں اس کو منفعت نظر آتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی حلال ہونا چاہیے، اس میں تو تعاون ہے لوگوں کا، فلاں ہیں. لیکن ذہن میں رہنا چاہیے کہ اتنی بڑی کمپنی ہوتی ہے اتنی زیادہ مال و دولت امت کی لوٹی جاتی ہے. پھر جوئے کے نام پر جو رقم دی جا رہی ہے، رقم صرف کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں، جیتنے والا تو ایک ہوتا ہے. ایک کروڑ، ایک لاکھ کی گاڑی، چار لاکھ کی گاڑی، پانچ لاکھ، دس لاکھ کی گاڑی جو ہے انعام میں رکھ دی جاتی ہے جوئے میں، اور جوا کمانے والے وہ کروڑوں میں ہوتے ہیں. پھر یعنی اجتماعی طور پر کمپنی اتنی بڑی ہوگی، امت کے اجتماعی مال کو اتنا زیادہ وہ صرف کرنے والی ہوتی ہے. اس میں لوگوں کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اور یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز یعنی دنیا میں کوئی چیز اگر کوئی منفعت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنے کی چیز ہے کہ شریعت نے جب کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس میں انسانی جو ہے نا اگرچہ کہ بظاہر کوئی منفعت نظر آ رہی ہو لیکن اس کی مذرت زیادہ ہوتی ہے انسان کے لیے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. جمعے میں بھی یہی صورتحال ہے، شراب میں بھی یہی صورتحال ہے. تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا، اس کو بھی حرام قرار دیا. اس کے بعد فرمایا کہ والانصاب والاجلام، انصاب بھی یعنی بت بھی، ظاہر سی بات ہے کہ بت پرستی یہ بھی جائز نہیں ہے. اور فرمایا کہ एक वजह उलमा ने ये लिखी है कि ये शराब को और जुमे को बुत के साथ जिक्र करने की वजह यह है कि इसकी मजम्मत अल्लाह तबारक मुताला ने यहाँ पर बयान की है कि शराब और जुआ ये बुतों जैसी इबादत करने के बराबर है। इसलिए तस्करे में अल्लाह तबारक मुताला ने बुतों का भी तस्करा कर दिया कि ये शैतानी कामों में से इससे बचो। और इसके बाद फरमाया कि वल अजलाम, और ये तीर निकालना, फाल निकालना, ये उस जमाने में अरबों में ये भी एक रिवाज था कि फाल निकाला करते थे और इसकी शक्लें अलग अलग हुआ करती थी। एक तो इसकी एक शक्ल ये हुआ करती थी कि एक जानवर ज़बह किया करते थे, उस जानवर में कई 10 लोग शरीक हैं मिसाल के तौर पर, उन 10 लोगों में 10 हिस्से जानवर के नहीं होते थे, हिस्से तो 10 होते थे, 20 होते थे, 15 होते थे, जितने भी होते थे, लेकिन तीर जो है, जो 10 लोग शरीक हैं तो तीर तो 10 हो गए, उन 10 तीरों में से कुछ तीर खाली होते थे और कुछ तीरों पर हिस्से मुतय्यन कर देते थे कि भाई ये 3 हिस्से, ये 2 हिस्से, ये 5 हिस्से, ये 7 हिस्से। अब उसके बाद जो है ना, तीर और तरकश में से बस्ते में से निकाले जाते थे, जो बस्ते में से निकाल कर जिसके तीर हाथ आ गया उसको जितने हिस्से उसके तीर पर लिखे हुए उसको मिल जाते थे, और जिसके तीर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था तो उसको वो महरूम हो जाता था। ये सूरत हाल उनकी होती थी। और फिर ऊपर से सूरत हाल ये होती थी कि भाई वो जानवर को कुर्बानी करने, यानी जानवर की कीमत भी उसको देनी पड़ती थी, ऊपर से हारा और कीमत भी देनी होती। ये सूरत, ये भी एक सूरत थी उसकी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मना फरमाया है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानियत के और रहमदिली के तआवुन के जज्बे के खिलाफ है, नहीं करना चाहिए। तो फरमाया कि शैतान के कामों में से इससे बचाता हो। तो फरमाया फजतनिबू, इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ। इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक रिवायत जिक्र फरमाई है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाया कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबारत इरशाद फरमाई है, मन शरीब अल-ख़म्र फ़ी दुनिया, कि जो आदमी दुनिया में शराब को पीता है, तुम लम यतुब मिन्हा फ़ी मा फ़िल आख़िरा, फिर वो उससे तौबा नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको, बल्कि उसको आखिरत में महरूम कर दिया जाता है। आखिरत में महरूमी या तो जन्नत से महरूमी होती है, आखिरत में महरूमी या तो शराब से महरूमी होती है, कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में जन्नत में शराबी से महरूम कर देते हैं। बाज़ उलमा की राय यह है कि ऐसे शख्स को जन्नत में शराबी नहीं दी जाएगी, हालांकि वहाँ जो शराब तो दी जाएगी, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि शराबें होती हैं वहाँ पर, लेकिन ऐसे शख्स को नहीं दी जाएगी, बाज़ उलमा की राय है। बाज़ ये कहते हैं कि भाई नहीं, ऐसे शख्स को यानी जन्नत में शराब तो दी जाएगी, लेकिन ये वाइद के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इशार फरमाई है, ये शराब को हलाल समझ कर जो पीने वाला होता है उसके लिए वाइद बयान की गई है कि वो जन्नत में जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो काफिर हो जाएगा, फिर तो वो शराब से महरूम हो जाएगा। तो बहरहाल इसकी बड़ी वाइदें हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही आने को भी नसीब फरमाए। जितने मुनकरात हैं, जितने मासी हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जो है उसे हिफाजत फरमाए।